मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज चूंकि खबरों की संख्या नहीं के बराबर है, इसलिए मैं आप सबसे जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा और मैं बात करूंगा इस पर कि विचार करने की आप आदत डालें। लेकिन इससे पहले जो एक घटना है, खबर है कह लीजिए, उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वो कुल मिलाकर के यह है कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक का पारित होना। परिवार न्यायालय, देखिए सिंपल सी बात है कि यह जो विधेयक है इसका संबंध किससे है कि परिवार के विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों के स्थापना की व्यवस्था की गई है कानूनन, ठीक है, परिवार न्यायालय विधेयक, उसमें यही कहा गया होगा। लेकिन अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। ये जो पहला कानून बना था ये 1984 में बना था। अब देखिए 1984 के बाद हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, है ना? तो समय के साथ साथ डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। परिवार के स्वरूप बदल गए हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो पारिवारिक विवाद उतने ज्यादा नहीं होते थे, खासकर पति पत्नियों को लेकर के, बच्चों पर अधिकार को लेकर के उस समय इतने विवाद नहीं होते थे। लेकिन जब से न्यूक्लियस फैमिली आई है, न्यूक्लियस फैमिली का मतलब है कि पति पत्नी और उनके बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हैं उनके वृद्ध माता पिता, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस फैमिली। तो जब से न्यूक्लियस फैमिली लगातार इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह के विवाद भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास डेटा है जो बताते हैं कि किस तरीके से तलाक की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले आपको अखबारों में ये बातें पढ़ने को सुनने को नहीं मिलती होंगी कि कोई माँ अकेले अपने बेटे का पालन कर रही है, जबकि बेटी या बेटी का पालन कर रही जबकि उनके पति हैं, या पता लगा कि पति अकेले अपने संतान का पालन कर रहा है जबकि पत्नी उनकी है, या तो पत्नी बिल्कुल अलग रह रही है, वो भी अकेली रह रही है, या उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है, या पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। तो इस तरह की स्थितियां पहले नहीं हुआ करती थी, अगर होती भी थी तो बहुत इक्के दुक्के हुआ करती थी, तो विवाद की स्थिति भी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह है कानून के साथ, याद रखिए कि अगर समय के साथ कानून में संशोधन नहीं किए गए तो न केवल वे कानून टूटेंगे बल्कि सामाजिक समस्याओं में भी इजाफा होगा, उनमें भी जबरदस्त रूप से वृद्धि होगी। तो ऐसे में बहुत अच्छा है कि यह कानून आया है। लेकिन इस कानून के केंद्र में, यानी कि जो संशोधन विधेयक है, इसके केंद्र में जो संशोधन किया गया है वो ये है कि अब जो राज्य सरकारें हैं वे भी पारिवारिक न्यायालय स्थापित कर सकेंगे। रेडियो न्यूज के आधार पर मैं ये बात आप सबसे कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ा सा और पढ़ लें, एक बार बस उस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ध्यान से देख लें। हालांकि अब इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चंस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं कि आप बताइए कि पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इस तरह से जरूर हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इससे खासकर पारिवारिक विवादों को सुलझाने में कितनी मदद मिल सकेगी। हालांकि यह भी प्रश्न बहुत ही सामान्य श्रेणी का ही प्रश्न है, तो मुझे इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की भी उम्मीद नहीं है। लेकिन टॉपिक को अपडेट करने के लिए मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम आते हैं मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है विचार करने की आदत। मैंने इस विषय को क्यों चुना है? मेरे पास बहुत से मेल आते हैं, और मेल इस तरीके के होते हैं कि सच पूछिए तो मुझे पढ़कर थोड़ी सी तकलीफ ही होती है। लेकिन ठीक है, उनके मन में एक प्रश्न है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ इसलिए होती है कि ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, और इस तरह के प्रश्न स्टूडेंट के दिमाग में उठ क्यों रहे हैं, और मैं समझ जाता हूं कि क्यों उठ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेल मेरे पास आ रहा है कि सर, ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं इनकी हम कितनी बार रीडिंग करें। अब ये बताइए कि मैं क्या बता दूं कि आप कितनी बार उसकी रीडिंग करें। क्या सच में आपको लगता है कि यह जो प्रश्न पूछा गया है यह एक अच्छा प्रश्न है, या इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, या अगर दिया भी जा सकता है तो क्या दिया जा सकता है? विचार करके देखिए, कितनी बार रीडिंग करें इसका संबंध केवल एनसीईआरटी की किताबों से ही नहीं बल्कि किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर भी बात करना चाहिए जिस पर मैं अभी आज बात कर रहा हूं। दोस्तों, ज्यादातर मैंने पाया है कि जब स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें रट रहे होते हैं और समय समय पर उन्हें रिवाइज भी कर रहे होते हैं। मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये जरूरी है क्योंकि ये तो बेसिक्स हैं। अगर हम यहां से शुरू नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। न्यू तो यहीं से तैयार होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि विचार करें, तो मैं विचार किस पर करूंगा? हवा में तो करूंगा नहीं। विचार करने के लिए मेरे पास कुछ तथ्य तो होने चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक पर किसी से बहस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक की अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आप उससे बहस कैसे करेंगे, बातचीत नहीं कर सकते उस टॉपिक पर। तो अगर मुझे विचार करना है तो डेफिनेटली विचार करने के लिए मेरे पास कोई आधार होना चाहिए और वह है विषय का ज्ञान। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, समय समय पर आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा ताकि फैक्ट आपके दिमाग में मौजूद रहें, उत्तर लिखने के लिए भी और प्री को क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन संकट वहां खड़ा होता है जब आप केवल फैक्ट तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। फैक्ट से आगे बढ़ने की कौन सी सीढ़ी है, वो कौन सी सीढ़ी है जिस पर आप पैर रखकर आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे? वह सीढ़ी है विचार करने की। एक घटना घट गई या अखबार में एक खबर आ गई, या यूं कह लीजिए कि आप एक एडिटोरियल कमेंट पढ़ रहे थे और उस एडिटोरियल कमेंट में आपको कुछ पढ़ने को मिल गया, बात खत्म हो गई। आपने उसे याद कर लिया, आपने उसे नोट कर लिया, क्या यहां बात खत्म हो गई? नहीं, ये बात की शुरुआत है, यहां से बात शुरू हुई है और इस बात को आगे तक जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने दो तीन दिन पहले, एग्जैक्ट नहीं लेकिन दो तीन दिन पहले की ही बात है कि दैनिक भास्कर का एक आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था, आपको शायद याद होगा। मैं केवल उदाहरण के रूप में इसे आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं इसके आधार पर आपको कह रहा हूं कि आप अपना मूल्यांकन कीजिए। विचार कैसे किया जाना चाहिए, केवल यह बताने के लिए यह उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं। जैसे उस एडिटोरियल कमेंट की शुरुआत इन शब्दों से हुई है, अर्थशास्त्र की मान्यता है कि अगर किसी देश में जीडीपी का आयतन बढ़ रहा हो पर साथ ही गरीबी भी बढ़े तो अमीर गरीब की खाई मिटाना सरकारों का नैतिक ही नहीं आर्थिक दायित्व भी है। अगर यह नहीं किया गया तो जीडीपी दर घटेगी और समाज में असंतोष जनित अशांति बढ़ेगी। उत्पादन प्रक्रिया में तकनीक से जीडीपी बढ़ती है, यह जीवन को सरल और उत्पादन लागत को कम करती है। अब देखिए कि एक छोटा सा वाक्य है ये, लेकिन इसमें कितने सारे तथ्य आपके पास विचार करने के लिए हैं। पहली बात, वो कह रहे हैं कि अगर किसी देश में जीडीपी का आयतन बढ़ रहा है पर साथ ही गरीबी भी बढ़े तो अमीर गरीब की खाई मिटाना सरकारों का नैतिक ही नहीं आर्थिक दायित्व भी है। तो अब आपके पास विचार करने के लिए जो प्रश्न है वो ये है कि जब जीडीपी बढ़ रही होगी तो क्या गरीबी भी बढ़ेगी? अनिवार्य है कि गरीबी बढ़े? अगर अनिवार्य नहीं है तो फिर भारत के संदर्भ में कौन सी बात सही है? क्या सच में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ेगी ही? अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो अनिवार्य है कि यह ऐसा होगा ही, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कौन कौन से फैक्टर हैं, क्यों नहीं होगा, आप इस पर विचार कर सकते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर यह नहीं किया गया, यानी कि अमीर और गरीबी की खाई को कम करने की कोशिश नहीं की गई, तो जीडीपी दर घटेगी। ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे जीडीपी दर घट जाएगी? तो या तो ये सही कह रहे हैं या लिखने में कुछ गलती हो गई है, कैसे? अब इस पर आप विचार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में जीडीपी दर घटेगी तो फिर बताइए कि कैसे घटेगी। सोच करके अपने दिमाग से निकालिए, समझने की कोशिश कीजिए। खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद लीजिए। और फिर जब जीडीपी घटेगी तो समाज में असंतोष जनित अशांति पैदा होगी, शायद ये आपके लिए आसान होगा समझना। फिर कह रहे हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी से जीडीपी बढ़ती है, यानी कि जब हम उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा तो जीडीपी बढ़ने लगेगी और उत्पादन लागत कम होगी। ऐसा कैसे होगा, क्या हो जाएगा उत्पादन में अगर हम तकनीकी का उपयोग करेंगे तो? मतलब इस तरीके से आपको अपने दिमाग में यह आदत डालनी पड़ेगी जबरदस्ती रूप से कि तुम सोचो। ऐसा नहीं है कि जो तुमने पढ़ लिया बस उसे ही तुम सच मान लो और अपने दिमाग में रख लो। सच मानिए, लेकिन उस सच के पीछे के कारणों को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि यह सच क्यों है। तब आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी। और दोस्तों, जब आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी, तभी यह मान करके चलिए कि वह प्री के उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकेगा जो आपने अन्यथा पढ़े नहीं हैं, और मेंस में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकेगा जिनके बारे में सीधे सीधे आपने किताबों में नहीं पढ़ा है। ये आदत होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई घोड़ा है, बैठ गया है, अब उठ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसे कोचते हैं कि नहीं उठो, और एक बार वो उठ जाएगा तो फिर चलने लगेगा। तो हमारे भी अब तक के पढ़ने की जो पद्धति रही है वो एक तरह के इसी तरह से बैठे हुए घोड़े जैसी हो गई है कि उसके अंदर हमने कुछ डाल दिया तो उसे याद रह जाता है, लेकिन उसे अपनी तरफ से अगर कुछ सोचना पड़ा, यानी कि अपनी तरफ से उठकर चलना पड़ा, तो उसे काफी दिक्कत होती है। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, मेरे पास कल दो ईमेल बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे और बहुत अच्छे ईमेल आए हैं। उसमें एक है खुशबू प्रजापति का जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और दूसरा है शिवांगी पांडे का उत्तर प्रदेश से ही है। आप रघुपुर आपका गाँव है और जिला है आजमगढ़। तो खुशबू और शिवांगी, इतने खूबसूरत मेल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो लिखा है और भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उसमें भावनाओं की सच्चाई और विचारों की प्रखरता दोनों दिखाई दे रही है। अपने इस स्टाइल को कंटिन्यू रखें, थमने न दें। और जो तीसरे मित्र हैं मेल के लिए, जिनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वो हैं अनीश गुप्ता गिरिडीह झारखंड से। तो दोस्तों, अब मुझे इस आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और दूसरे विषयों पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।